ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಜಯ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಶ್ರೀ ಬರಸಾನ ಧಾಮ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ನಿತಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश हिंदी हरे कृष्णा इसी में क्लास खत्म हो जाएगा अच्छा अच्छा ब्रज भाषा सबके समझ में ना आवे श्री राधे श्याम तो आज का ये संस्कार सीमंतो नयन संस्कार ये मनुष्य जीवन के कई संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। वहाँ का दरवाज़ा बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ की आवाज़ नहीं आएगी अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एयरलाइन मोड। तो मनुष्य जीवन जो है वो केवल ऐसा एक जीवन है जिसमें संस्कार होते हैं, बाकी किसी भी जीवन में संस्कार नहीं होते हैं। कोई प्राणी जीवन में संस्कार नहीं होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा, तो जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है, सॉरी टू से, क्योंकि संस्कार के बिना जिसका जन्म होता है उसको शूद्र कहते हैं। संस्कार के साथ जिसका जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेत द्विजा, मतलब ट्वाइस बॉर्न, एक माता के गर्भ से और एक संस्कार के द्वारा। वो संस्कार के द्वारा जिसका जन्म होता है संस्कार करने के पश्चात उसी को मनुष्य कहते हैं। उसके बाद मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और संस्कार भी होते हैं और फिर वो ब्राह्मण बनता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। हाँ, इस संस्कार बहुत जरूरी है और संस्कार हमारे जीवन की गति को बदलते हैं। संस्कार जीवन को भगवान की ओर ले जा सकते हैं अगर उसको भगवान भावना में किया जाए तो। लेकिन तात्पर्य की बात एक ही है कि संस्कार मनुष्य के लिए होते हैं, प्राणियों के लिए नहीं होते हैं। और ऐसे कई 55 संस्कार बताए गए हैं जो जन्म होने के पहले से शुरू होते हैं। गर्भाधान संस्कार, उसके बाद पुसंवन विधि, उसके बाद गर्भ संस्कार, उसके बाद सीमंत नयन, उसके बाद जाति संस्कार, नाभि संस्कार, जाति संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन, हाँ कई सारे संस्कार हैं, विद्यारंभ संस्कार, सुष्यंति, बहुत सारे संस्कार हैं। तो इन संस्कारों का अर्थ एक ही है कि जीव जिन अनंत जन्मों से भटक रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र में, अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए, शुद्धिकरण होने के लिए संस्कार दिए हैं, ताकि एक एक करके हम सब सबसे छूट जाएं और बाद में हमारी आत्मा भगवान की भक्ति में रममाण हो जाए, मग्न हो जाए। तो इसलिए ये संस्कारों का महत्व है। लेकिन ये संस्कार केवल स्वार्थ के लिए करेंगे तो फिर वो एक जगह आपको छोड़ेंगे, उसका स्टेशन दूसरा होगा। ये संस्कारों का एक सार है, वो एक सार जो है वो भगवान को संतुष्ट करना है। हर संस्कार के पीछे एक ही भाव होता है, भगवान की संतुष्टि, सम सिद्धिर हरि तोषणम। और ये संस्कार करने से अगर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास हम नहीं करते हैं तो हमारे सारे संस्कार फेल हैं, इट्स यूजलेस। एक तो संस्कार करना जरूरी है, एक नंबर वन की बात है, और नंबर टू संस्कार करने के साथ साथ भगवान को प्रसन्न करना भी जरूरी है, और तीसरी बात उसके साथ भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना भी जरूरी है। ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, तब जाकर संस्कार परिपूर्ण होता है और संस्कार का लाभ जिस जीव के लिए इच्छित है उसको पूर्णता संपूर्ण मतलब परिपूर्ण तरीके से प्राप्त होता है, कंप्लीटली बेनिफिशियल टू द सोल। तो आज का जो संस्कार जो है वो सीमांतोन्नयन संस्कार है। सीमांत यानी कि जो औरतें अपने बालों को दो विभाग करते हैं उसको सीमांत कहते हैं, जो संस्कारी औरतों के लिए बीच में होता है। कई लोगों को ये बात पता नहीं है और मैं आपको केवल शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ कि जो कुलीन स्त्री होती है, शालीन कुलीन सर्वगुण संपन्न स्त्री होती है, अच्छे घराने से होती है, अच्छे संस्कार प्राप्त की होती है, वो हमेशा अपने बालों को बिल्कुल बीच में विभाजित करती है। और कृपया कोई औरतें बुरा नहीं मानना, मैं केवल शास्त्र से कह रहा हूँ। और इसके अलावा जो साइड में बालों को अलग करते हैं वो केवल वेश्या होती है। पुराने ज़माने में वेश्याओं को पहचानने का एक ही तरीका था कि उन्होंने अपना बाल का पार्टिंग किधर किया है, उससे वो सिग्नल देते हैं। अभी कैसे आजकल के ज़माने में होमोसेक्सुअल्स कुछ रिंग पहनते हैं, वो सिग्नल होता है कि आई एम लाइक दिस। उस तरह से इसके अलावा कहीं भी बाल को अलग करना ये उस तरह के कार्य का प्रतीक है, अपवित्र कार्य का प्रतीक है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा बीच में बालों को विभाजित करना चाहिए। और वो जो मार्ग है बीच वाला उसमें बहुत सारी शक्ति है। आज हमने जितने संस्कार किए वो सब उस मार्ग में किए। कितने लोग थे उसमें संस्कार में, तो वो जो भी हमने बहुत अद्भुत दिव्य चीज़ें को वहाँ से प्रवाहित किया मंत्रों के साथ में, वो उसी मार्ग में से किया। क्योंकि हमारे शरीर के कई रंध्र होते हैं, कई चक्र होते हैं, रंध्र होते हैं, कई इंपॉर्टेंट स्थान शरीर में है, वहाँ पर दिव्य शक्ति सुप्त रूप में रहती है। तो उसको जागृत करने के लिए कई तरीके हैं। अभी गर्भ में जीव है उसको शक्ति देने के लिए वो मार्ग है, वहाँ से उसको शक्ति दी गई है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसको मैंने बताया था उनको कि यहाँ से अलग करने के बाद नीचे से बालों को बांध के रखना है, न केवल उसको वो मुझे उसको इंसर्ट करना था इसलिए नहीं, वो तो एक ज़रूरी था उसको, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को वहाँ पर लगाया ना उसको ऐसे बालों में। लेकिन बालों को बांधना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे हमारा शिखा होता है कभी खुला नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा बंधे रहना चाहिए। क्या कारण है उसका? पुरुषों का शिखा, स्त्रियों के लंबे बाल, दोनों बंधे होने चाहिए। क्या कारण है उसका? क्योंकि बालों में बहुत शक्ति होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की। वो आपके मति को पूर्णतः भ्रष्ट भी कर सकती है या आपके संस्कारों को बराबर संभाल के भी रख सकती है। इसलिए स्त्रियों के बाल जो होते हैं वो केशभूषा जो है वो केवल अपने घर में वो उसको खुले छोड़ सकते हैं, और घर के बाहर जब भी आप खुले बाल छोड़ के जाते हो तो अनेक प्रकार के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो सबसे पहले बालों पर हावी हो जाते हैं। इसका एक प्रमाण आपको बताता हूँ मैं। पुराने ज़माने में जो तांत्रिक लोग होते थे उनकी शक्ति कहाँ पे होती थी? बालों में, है ना? कितनी कहानियाँ ऐसी हैं। अभी अभी तो 100 साल पहले भी ऋषि कृष्ण की कहानी है जो बाल उखाड़ के, दुर्वासा मुनि की कितनी कहानियाँ हैं, बाल उखाड़ के राक्षस पैदा करते थे। तो केवल जो अच्छी शक्तियाँ हैं वो भी बालों में होती हैं और नेगेटिव शक्तियाँ भी बालों में होती हैं। अगर आप ब्लैक मैजिक सीखेंगे उसका सारा जोर बालों पे होता है। और जिन स्त्रियों के बाल खुले होते हैं उसमें कहीं गांठ नहीं लगाई गई है, उन बालों के अंदर नेगेटिव जो भावनाएं हैं ना वो प्रवेश करती हैं। इसलिए जब से स्त्रियों के बाल खुले होकर आम जनता में स्त्रियाँ घूमने लगी है तब से स्त्रियों का चरित्र जो है वो पतित होते आया हुआ है। ऑल दिस नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो होता है ना, वो फ्लर्टिंग, व्यभिचार और वो मति, भ्रष्ट मति के रूप में लोगों को देखना, ये सब तब से शुरू हुआ है जब से स्त्रियों के बाल खुल गए। तो ये बहुत समझने की बात है। अभी आज मैं ये प्रवचन बाहर दूंगा तो मुझे पागल बोलेंगे लोग, क्योंकि एवरी अदर वुमन इज फुल्ली विद लूज हेयर, दिस इज हाउ इट इज। उनको लगता है कि जहां पर भी जाए शादी में वगैरह तो बाल खुले छोड़ के जाना चाहिए। दिस द लेटेस्ट फैशन कि वो बाल खुले होंगे तो ही वो शादी का माहौल ऐसा लगता है कि कुछ है, उत्सव में जा रहे हैं। बट ये एक पतित संस्कृति का लक्षण है, क्योंकि स्त्रियों के जो केश होते हैं वो केवल पति को देखने के लिए होते हैं। इसलिए संस्कारी स्त्रियां जो होती है वो हमेशा पल्लू लेकर चलती हैं। उनके बालों का सौंदर्य जो है वो जनता के लिए नहीं है। आपके बालों का जो सौंदर्य है मुझे नहीं भोगना है आंखों से, केवल आपके पति को देखना है उसको। योर हेयर इज नॉट मेंट फॉर एनीबडी एल्स एक्सेप्ट योर हस्बैंड। बट आज शायद पति कम देखता होगा, जनता ज़्यादा देखती है उनके बाल, है ना। पीपल फील कि मेरे बालों को सबको दिखाना ये मेरा वेल्थ है, दिस इज माई वेल्थ, आई वॉन्ट टू शो माई हेयर टू एवरीबडी। तो जितने बाल के स्त्रियों के ओपन होते हैं उतने सारे जो अभी हमारे बचपन में हमारी माता हमारी बहनों को बताती थी कि बाल धोकर समुद्र के आसपास घूमना नहीं, या कभी खुले जगह पर घूमना नहीं चाहिए। प्राइवेट जगह पर बाल सुखाना है तो भी प्राइवेट जगह पर उसको सुखाना है, गिले तो होते हैं ना, उसको जनता में नहीं सुखाना है उसको, और खुले छोड़ कर जाना भी नहीं है, खास करके समुद्र किनारे, नदी किनारे, सुनसान जगह पे, क्योंकि समुद्र किनारे शमशान होता है, वहाँ पर प्रेत जलते हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिन ब्रह्म राक्षस वहाँ घूमते रहते हैं। सबसे पहले बालों में प्रवेश करते हो सबसे पहले, और बालों में प्रवेश करके फिर मति को भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए ये सारे आपको लगेगा क्या है सब, महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो फिर उसका परिणाम आपके जीवन में होते हुए दिखाई पड़ेगा। उच्छृंखल नाम का एक शब्द संस्कृत में आता है, उच्छृंखल यानी कि जो श्रृंखला में नहीं है, श्रृंखला के बाहर, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। स्त्रियां तब ऐसे हो जाती है जब उनका संस्कार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये सब बातों को अगर श्रद्धा है तो बहुत महत्व है आपको। श्रद्धा नहीं तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चल ही रहा है ना बिना संस्कार के, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है उधर। उनके पतन का कोई लिमिट नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, और नीचे और नीचे और नीचे, कोई देयर इज नो एंड टू दैट। क्या क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि वहां की सारी स्त्रियां तो खुले बाल लेके चलती है, कोई बाल बांधने का कोई कारण ही नहीं है। और अभी नए नए हेयर फॉल ऐसे आए हैं कि एक बार वो आपने कर दिया तो फिर उसको बालों को बांधने का कोई सवाल ही नहीं, उसको खुला ही छोड़ना है। सो इट इज ऑल डेंजरस टू कॉन्शियसनेस। और हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान को प्राप्त करें, इसलिए तो संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो जब हम बाल को बांधते हैं ना तो हमारी जो दिव्य शक्ति है वो हमारे पास ही रहती है। अगर मैं ये शिखा छोड़ के प्रवचन कर रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरी सारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी हमको पुरुषों को भी ब्राह्मणों को भी शिखा छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। केवल स्नान के समय, निद्रा के समय हम छोड़ते हैं उसको और सो जाते हैं या टॉयलेट में, और उसके बाद तुरंत उसको हम बांधते हैं वापस। उसको भी एक तिलक लगाते हैं, उस पर एक मंत्र बोलते हैं, ओम श्री वासुदेवाय नमः। ये जगह जो है ये बहुत पावरफुल जगह है। ये योग शास्त्र में इसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है, और यहीं से योगी मुक्ति प्राप्त करता है ब्रह्मरंध्र से, और वहीं पर हमारा शिखा होता है, और वहीं से वो शिखा रखते हैं, और वहाँ से दिव्य शक्ति गुरु जी के द्वारा प्राप्त होती रहती है। ये सब साइंस है, आपको नॉलेज है तो उसका बहुत महत्व है, नहीं तो कुछ नहीं है। एनीवेज इस संस्कार में जो भी हमने यूज़ किए सब चीज़ें, कुश ग्रास का यूज़ किया, शालिंदर के एक बाल का उपयोग किया, वो सब जैसे कि गाय का होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको आप, हम्प, मतलब क्या हिंदी में कुबड़ होता है, जो भी वो भी एक दिव्य शक्ति का संचार करने की जगह है। वो उस जगह से गाय और बैल जो वैश्विक आध्यात्मिक शक्ति है, वैश्विक आध्यात्मिक शक्ति है उसको आकर्षित करती है, और फिर वो शक्ति वहां से गाय बैल के पैर से भूमि में प्रवेश करती है, और फिर भूमि को वो शक्ति प्राप्त हो जिससे आपको वो अन्न धान्य और वो मेंटेनेंस का शक्ति प्राप्त कर देती थी। और आधुनिक साइंस ने क्या कर दिया, बैल के द्वारा जमीन को क्या करते हैं उसको, नांगर करना बंद हो गया, ट्रैक्टर आ गया, तो अन्न धान्य में दिव्य शक्ति कहां से आएगी? बैल को हटा दिया तो फिनिश्ड। आप वो लोहे के आरी से ट्रैक्टर लगा के खेती कर रहे हैं तो खाना तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन शक्ति नहीं उत्पन्न है, वाइटैलिटी इज नॉट देयर। गाय को हटा रहे हैं समाज से तो भी शक्ति जा रही है। तो वैसे ही वो जो सालिंदर है, पॉर्क्यूपाइन, हाँ, उसके अंदर ऐसे हजारों, ऐसे सैकड़ों, ऐसे हजारों ऐसे होते हैं बाल। बाल मतलब एक ऐसा एक दंडी जैसा होता है, कांटे जैसा होता है, तो कई सारे होते हैं। वो सारे आध्यात्मिक शक्ति को आकर्षित करते रहते हैं, इसलिए कि एंटेना, स्पिरिचुअल एंटेना, ये भी स्पिरिचुअल एंटेना है, आपके बाल भी आपका स्पिरिचुअल एंटेना है। तो वो उसके द्वारा मंत्र अभिमंत्रित करके हम वो शक्ति उस बालक को दे रहे हैं पिता पति के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, ताकि गर्भ जो है वो सारे नेगेटिव जो वाइब्रेशंस है उसके मुक्त हो जाए। भूत प्रेत पिशाच का जो अटैक है, लोगों की नजरों का जो अटैक है, वो भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है। और आप बहुत सुंदर हैं और मैंने आपको ऐसे नज़रों से देखा तो कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो नज़रों में भी बहुत शक्ति है। अभी कैसा है, कलयुग का दुर्भाग्य ऐसा है कि पॉजिटिव शक्ति कम, नेगेटिव ज़्यादा। मैं आपको देखकर आपका भला नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको देखकर आपको बुरा जरूर कर सकता हूँ। माई हार्मिंग पोटेंसी इज मोर देन माई बेनिफिटिंग पोटेंसी, ये कलयुग का लक्षण है। मेरी नज़र आपको ज़्यादा लगेगी और कम आशीर्वाद दे सकती है, ये सिचुएशन है आज की, क्योंकि इतने सद्गुण है ही नहीं जो देखकर आपको कृपा प्राप्त हो। गुरुजी की कृपा उनके प्रेम भरे करुणा भरे नज़रों से प्राप्त होती है। जब गुरु आपको प्रेम भरे नज़रों से देखते हैं एकाग्रता से, तो भगवान की कृपा उनके नज़रों से प्राप्त हो जाती है। और हम आपको देखेंगे तो एनवी, ईगो, प्राइड, ग्रीड सब ट्रांसफर हो जाती है, और वो भी बालों पर गिरती है, तो स्त्रियों के लिए बहुत ख़राब चीज़ है वो। तो भोग की भावना से जब वो किसी को हम देखते हैं तो वो व्यक्ति के लिए बहुत ख़राब होता है वो, जिसको आप देख रहे हैं भोग की भावना से। जब स्त्रियाँ खुलेआम घूमती रहती तो दुनिया दुनिया सब उनको भोग की भावना से देखते रहती हैं, दृष्टि से भोग करते रहते हैं उनका, जो एक बहुत निजी प्रॉपर्टी है किसी की, जो केवल उसी के लिए दी जाती है, और जनता उसका दृष्टि भोग कर रही है, और ये उस स्त्री के चेतना के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये सीमांत के हिस्से से वो दिव्य शक्तियाँ गर्भ को दी गई और शुभाशीर्वाद भी दिए गए उससे, और फिर एक पुत्रवती विवाहित स्त्री के द्वारा भी आशीर्वाद दिया गया, और फिर वैष्णवों के द्वारा और माता पिताओं के द्वारा भी आशीर्वाद दिया गया। ये सब जो है ना, ये आशीष जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुभकामना हर जीव के लिए आवश्यक होती है, शुभकामना के बिना हम जी नहीं सकते हैं। लोगों की अगर दुष्कामनाएं हमारे साथ होंगी तो हम लोग प्रगति नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी धनवान, कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी सुंदर, कितने भी अधिकारी पुरुष क्यों ना हो। वी नीड बेस्ट विशेस ऑफ अदर्स, और वो आजकल किसके हृदय में बेस्ट विशेस है? सबके घर में, सबके मन में द्वेष, हिंसा, लोभ, काम, क्रोध बसा हुआ है। शुभ आशीष कहाँ से उत्पन्न होगा? उसके लिए भी ट्रेनिंग लगती है। यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ टू गिव बेस्ट विशेस। अपने आप नहीं होता है बेस्ट विशेस, अपने आप बुरी इच्छाएं प्रकट होती हैं कि आप मेरे आगे जा रहे हो, आपकी तनख्वाह मेरे से अधिक है, आप मेरे से अधिक सुंदर हो, आप मेरे से अधिक अच्छे पद पर हो, आपकी गाड़ी मेरे से बड़ी है, मेरे पास नहीं है। ये दिस इज मोस्ट कॉमन अपने हृदय में। दूसरों के प्रति आशीष की भावना, शुभ शुभकामना बहुत कम होती है आजकल। इसलिए भक्ति की ज़रूरत होती है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आने के बाद हमको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे दूसरों के लिए शुभकामना करना है, हाउ टू विश ऑलवेज गुड फॉर अदर्स इन स्पाइट ऑफ सफरिंग योर सेल्फ, हाउ टू विश बेस्ट फॉर अदर्स। ये एक सद्गुण है, इसके संस्कार की आवश्यकता होती है। संस्कार के बिना, अच्छे परवरिश के बिना, आप ये जो दूसरों के लिए शुभ आशीष, शुभ विचार, शुभेच्छा, शुभकामना प्रकट करने की भावना जो है वो निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। भगवान की भक्ति आवश्यक इसलिए है कि भगवान की भक्ति होने से हर प्रकार के सद्गुण जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपके अंदर ऑटोमेटिक पैदा होने लगते हैं। उत्पन्न होने लगते हैं, सारे देवताओं के गुण आपके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति का अक्सर व्यक्ति के अंदर निवास करना चाहते हैं। जैसे कार्तिक में जो दीपक भगवान को अर्पण करता है, उस दीपक दान करने वाले भक्त के शरीर के अंदर देवता निवास करना चाहते हैं। इसलिए वैष्णव एक महान व्यक्ति है, क्योंकि वैष्णव जब भगवान की भक्ति करता है तो उसके केवल भक्ति करने के क्रिया से ही सारे देवता उसके शरीर के अंदर निवास करते हैं। ब्रह्म शिव आदि सारे देवता, सारे संतगण उसके शरीर के अंदर निवास करते हैं, और इसलिए वो सारे तीर्थ स्थान उसके अंदर निवास करते हैं। इसलिए उनके होने से ही, उनके साथ बैठने से ही आपको पहले तो शांति का अनुभव होता है, फिर आनंद का अनुभव होता है, और शुभ शुभ फीलिंग होता है, अनुभूति होती है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, और मनुष्य जीवन संस्कार के लिए है। अंत्य संस्कार भी है ना, जीव शरीर को छोड़ने के बाद भी भगवान की प्राप्ति के लिए वैकुंठ आगमन, वैकुंठ समाराधान कहते हैं उसको हमारी साउथ इंडिया में, वो भी संस्कार है। जिसकी जिससे जीव शरीर से छूट जाएगा तो उसकी गति भगवान की ओर होगी, या तो पुनः आएगा, या तो नरक में जाएगा, या तो स्वर्ग में जाएगा, या तो भगवान के धाम में जाएगा। उसके लिए भी, उसका रास्ता सुधारने के लिए भी संस्कार है। आप कहेंगे अमेरिका में तो कोई संस्कार करता नहीं है, तो वी नो वेयर दे आर गोइंग, दे आर ओनली गोइंग टू सफर, दुख भोगने के लिए कहीं जाएंगे नरक में इधर उधर, और कोई रास्ता नहीं है। संसार के बिना जीवन यानी नरक की ओर यात्रा निश्चित रूप से, चाहे वो शरीर भी बहुत सुंदर हो, चाहे बहुत धन दौलत हो, चाहे विश्व पर राज करने वाले लोग हो वो, चाहे यहाँ पर उनके पास बहुत हाईटेक चीज़ें हो, लेकिन मृत्यु के बाद में वो कुछ नहीं बचेगा उनके साथ, उनके कर्म जाएंगे उनके साथ और नरक की ओर, उनको दुख की ओर ले जाएंगे। ये संस्कार इतने महत्वपूर्ण है कि नंद महाराज और यशोदा माई तो राजा थे, वो ब्रज के राजा थे, वो ब्रजराज, और उनकी पत्नी ब्रजेश्वरी वो भी ब्रज की रानी थी। उनको कोई जरूरत नहीं थी अपने पुत्रों को गाय चराने के लिए ट्रेनिंग देने की, इतने नौकर थे उनके पास, इतनी गाय का, इतना लाखों करोड़ों गाय का धन था उनके पास। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ना, तो जन्मत समय के समय क्या किया नंद बाबा ने, 7 पहाड़ बना दिए, पहाड़ चावल के, धान्य के, हर पहाड़ के ऊपर सोने और चांदी और ज्वेल्स रत्नों के मुकुट चढ़वाए पहाड़ के ऊपर, वो जो उन्होंने बनवाए धान्य के, उसके ऊपर अलंकार चढ़वाए, फूलों से श्रृंगार किया उन पहाड़ों का, और वो पहाड़ के चावल अलंकारों के साथ ब्राह्मणों को दान दे दिए, साथ साथ कितनी सारी गायें भी, लाखों गायें दान कर दी। इतने अमीर थे वो, बस कितना धन था उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। उससे भी अधिक धनवान विश्वभानु महाराज थे, यानी वो उस कथा में आऊंगा मैं। तो ऐसे धनवान व्यक्ति को, वो तो कर्म से तो वैश्य है ना, वो गो कृषि रक्षा उनका, गो रक्षा कृषि वाणिज्य उनका धर्म है। ऐसा होने पर भी वो अपने कृष्ण और बलराम जी को नंगे पैर गौचारण चरने के लिए भेजते हैं, 3 साल की उम्र से बछड़ों को भेजते हैं, फिर 5 साल हो गए तो बड़े गायों का भी जिम्मेदारी दे दिया उन्होंने। क्या जरूरत थी उनको, कोई जरूरत नहीं थी, देयर नो नीड, इतने सर्वेंट्स हैं वो अपने गाय चरा सकते हैं, उसमें क्या है, अपने इतने इतने मूल्यवान बालकों को, डिवाइन बालकों को क्यों भेजना है। लेकिन वो जानते थे कि संस्कार बहुत जरूरी है, हमारा पेशा ही गौचारण का है, हमारे हर बालक को गौचारण होना चाहिए। आज भी ब्रजवासी लोग, बहुत लोग परदेश से काम करते हैं, अमेरिका इंग्लैंड में काम करते हैं, बहुत सारे लोग जीवन भर वहीं रहते हैं, कि कभी कभी जन्म से ही जाते हैं, जवान बच्चे तो वहाँ बच्चे होते हैं उनको अमेरिका में, लेकिन ब्रजवासी है वो, गोस्वामियों के बालक हैं, फिर 50-60 साल में ब्रज में लौट के आते हैं। तो 50 साल के बाद लौट के आने के बाद भी वो व्यक्ति जो 50 साल का है वो गौचारण करता है, ब्रजवासी उपाधि अगर उसको चाहिए अपने जीवन में खुद के लिए, तो उसको नंगे पैर रास्ते पर गाय को चराना ही है। और मैं देखा हूँ कितने लोगों को 50-60 के साल के उम्र में भी गाय के लेकर रसोड़ पे चलते हैं, ब्रजवासी के भाव में, अब ब्रजवासी बनने के लिए। तो संस्कार कितना ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार इस भावना से हम अपनाएंगे तो हम भगवान के पास पहुंचेंगे। इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूँ, टेक इट वेरी सीरियसली। मनुष्य जीवन जानवर जीवन नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुन, इसी को करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं दिया गया है। मनुष्य जीवन इसके परे है, इसमें भी आहार चाहिए, निद्रा चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इसी के लिए जो ये जीवन नहीं दिया गया है। बार बार हम लोग इस कथा में 30 साल से हजारों बार सुनते होंगे, सुन गए होंगे इस बात को, ये फिर एक बार सुनना जरूरी है, क्योंकि हमारा मन हमेशा भटकते रहता है, आजू बाजू के परिस्थितियों के अनुसार, स्थिति के अनुसार, घटनाओं के अनुसार हमारा मन भटकते रहता है। तो बार बार उसको याद करना जरूरी है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, और लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारा जीवन इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, हालांकि इंद्रिय भोग हम करते रहते हैं, बेसिक मिनिमम गृहस्थों के लिए होता है, होता रहता है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, बीवी अच्छी, घर अच्छा, गाड़ी, सब कुछ भोग हमारे पास है, लेकिन उसी के लिए हम नहीं जी रहे हैं। यू कैन टेक ऑल दोस थिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मन में ये नहीं करना कि इसी के लिए हम जी रहे हैं, इसे खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है समझना। अच्छा खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। उस तरह से केवल भोग करने के लिए जीवन चलाना नहीं है, जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए चलाना है। तो जब राधा रानी का जन्म हुआ, तो राधा रानी का जन्म जब हुआ तो बहुत साल से बाद हुआ, मतलब नंद बाबा और ऋषभानु महाराज दोनों 80-85 साल के हो गए थे, और गोकुल नंदगांव बरसाना छोड़कर वो गोकुल में चले गए थे, और नंद बाबा गोकुल में और ऋषभानु बाबा रावल में अपना राज्य जमा लिए थे। तो उधर कमल के फूल में, कमल के हजारों पंखुड़ियों के कमल के फूल के बीच में राधा रानी की प्राप्ति हुई उनको। हाँ, तो उस समय उनकी नानी जो थी कीर्ति माता जी की माता, वो इंदुसेन गोप की पत्नी थी, वो नाना राधा रानी के, वो मुखारा उनका गांव था। तो वो जब खबर चली कि मेरी बेटी को बेटी हो गई है बहुत सालों के बाद, तो वो बूढ़ी मुखारा देवी जो थी इतनी आनंद में हो मशगूल हो गई कि वो नाचने लगे बहुत जोर जोर से, बूढ़ी बूढ़ी गोपी। और उसने क्या किया, नाचते नाचते एक बैल गाड़ी के एक चक्र को उठाया, ऐसे जो नीचे रखा हुआ था उसको उठाया, और उस पर दीपक रखे उसने, आरी पर, हर एक आरी पर, सब जगह पर, और दीपक जला कर रखे, और उसको हाथ में लगे घुमाने लगे ऐसे वो चक्र की तरह, और वो ऐसे करके नृत्य करने लगी। सारी गोपियों ने उनको देखा, उन्होंने भी अपने घर के बैलगाड़ी का पहिए लिए, उस पर दीपक लगाए, और वो भी नृत्य करने लगी। तो पूरे मुखारा गांव में मुखारा देवी के नेतृत्व में सब गोपियां ऐसे नृत्य कर रही है राधा रानी के जन्म के उपलक्ष्य में। उस नृत्य का नाम क्या है, चरकुला नृत्य, आज भी ब्रज में बहुत फेमस है एज अ कल्चरल फोक डांस, उसकी प्रतियोगिता भी होती है। चरकुला ले लो प्लीज टेक। तो और यहाँ पर नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने गणित किया था कि भगवान की प्रिय सखी अंतरंगा शक्ति, हाँ, जिसके अधीन भगवान है, वो ये आ गई है जन्म लेकर, तो उसके अनुसार वो आते हैं गणित करके उस घर में। तो वो कहते नहीं, कोई पुत्री नहीं हुई हमारे पास, क्योंकि उनको संकोच था उस बात का कि जन्म से वो ना आँखें खोल रही थी, ना आवाज़ कर रही थी, ना कुछ सुन रही थी, तो गूंगी बहरी अंधी सब कुछ थी वो। तो बहुत खुशी भी थी और संकोच भी था, दुख भी था, कैसे उसका उत्सव मनाएं, क्योंकि ऐसे अशुभ समझ रहे थे वो कि वो आंधी है और वो है। नारद मुनि आए तो उन्होंने कहा, कोई लड़की हुई, जन्म हुई है यहाँ पर? तो वो कहे नहीं, यहाँ पर कोई जन्म नहीं हुआ लड़की का। तो बड़े वो अचंभित हो गए। तो उन्होंने सुदामा को आगे किया कि नहीं, हमारा एक ही लड़का है वो सुदामा। बोले नहीं, मैं तो लड़के की नहीं, लड़की की बात कर रहा था। नहीं नहीं, वो एक ही लड़का है। तो चले गए थे उदास होकर, बोले दोबारा गणित करता हूँ, देखता हूँ कि रॉन्ग घर पे तो नहीं आया। जैसे आगे चले गए तो वो पति पत्नी और कुछ घर के चर्चा कर रहे हैं कि अरे बड़े महाराज हैं ये, शायद उनकी कृपा से आंखें खोल दे तो कितना अच्छा है, तो सच बोलना चाहिए हमको। तो दोबारा उनको बुलाओ, भेजते महाराज जी आइए आइए, है हमारे घर में कन्या है, लेकिन समस्या ये है कि हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि वो आंखें नहीं खुल रही, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ सुन नहीं रही है, हमने बहुत सारे खिलौने बजाए आंखों में कानों में उसके, तो सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ, इसलिए हम संकोच में थे, इसलिए आपको बताया नहीं। तो हाँ यस यस, उसी के इंतजार में था। तो वो भाग के अंतपुर में ले गए उसको, दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो वो सब बड़ा लिस्ट बना दिया क्या करना है, बड़ा महोत्सव आयोजित करना है, आपको इन लोगों को बुलाना है, ये साहित्य लाना है करके उनको सबको भगा दिया उन्होंने, जाओ तैयारी करो तुरंत। सब लोग निकल गए और अकेले नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम किया राधा रानी को, अंतपुर में दर्शन किया उनके आंखों के सामने। सब चले जाने के बाद में 16 साल के किशोर अवस्था का दर्शन राधा रानी ने उनको दिया, षोडश वर्षा, जो आपके कमरे में जो ऐसा हाथ है ना ऐसा, राधा रानी हड़ी है वो, उनका वो दर्शन है जो नारद मुनि को उन्होंने दिया। ऐसे कमल कमल के बीच में खड़ी है, वो आशीर्वाद दे रही है राधा रानी, वो नारद मुनि ने प्राप्त किया हुआ दर्शन है। नारद मुनि ने कहा कि हमको आपके अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ और वहाँ पर वृंदा देवी माधवी गोपी आपको सहायता करेंगी और मुझे मेरा दर्शन वहाँ पर भी होगा। तो नारद मुनि वहाँ से जो निकले ऐसे हाव विभोर होकर से नाचते हुए, कभी गोल गोल घूम रहे हैं, कभी बेहोश हो रहे हैं, रस्ते में गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, कभी गोल घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कब पहुँच गए वो, ऐसे गोल 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 होते होते और कुसुम सरोवर पहुंचे तो वहां पर वृंदा देवी ने और माधवी गोपी ने उनका स्वागत किया, दक्षिण किनारे में उनको स्नान कराया और नारद मुनि गोपी बन गए, नारद या गोपी। फिर उनका उन्होंने श्रृंगार किया गोपी के रूप में, बहुत सुंदर सखी बनाया उसको, उसका हाथ पकड़कर उसके वो कुसुम सरोवर के जल के अंदर ले गए। वो कुसुम सरोवर के जल के अंदर आज भी रत्न सिंहासन है, एक स्वर्ण कमल है, वहां पर ब्रिज है उसके अंदर बीच में अदृश्य रूप में, जहाँ पर सखियाँ वहाँ से अंदर जाती हैं और बीच के कमल के बीच की जगह पर रत्न सिंहासन है, उसमें राधा कृष्ण विराजमान हैं, श्याम सुंदर जी राधा रानी के साथ विराजते हैं और वो बीच वाले जगह के पास 8 दल है, उसमें 8 सखियाँ खड़ी हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। उसमें फिर और हजारों करोड़ों दल हैं, उसके अंदर हजारों करोड़ों सखियाँ खड़ी हैं, उनको रिझा रही हैं। तो वो नारदीय गोपी का हाथ पकड़ कर उनको बीच में ले जाते हैं, बिल्कुल कमल के बीच की जगह पर, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो स्थान होता है बीच में, ऐसा एक फ्लैट एरिया होती है, जैसे सूर्य फूल होता है ना सनफ्लावर, उसके अंदर कैसी जगह होती है, कमल के बीच में भी जगह होती है, हाँ ऐसी जगह होती है उसमें, उसमें वो विराजमान है, वहाँ पर उसको ले जाते हैं और फिर उनके हाथ में चामर देते हैं और नारदीय गोपी जो है राधा रानी और श्याम सुंदर जी की चामर सेवा करते हैं और साथ साथ में अष्ट सखियों का भी दर्शन करते हैं, सब उसको आशीर्वाद देते हैं और फिर नारद मुनि को फिर वापस वो हाथ पकड़ कर दक्षिण कोने में लेके आते हैं, फिर स्नान कराते हैं, फिर नारद मुनि जी दोबारा नारद मुनि बन जाते हैं। और जब वे सेवा करते हैं तो राधा रानी उनको आदेश देती है कि आप यहीं रहो और हमारी पूजा विधि का लेखन करो, पंचरात्रि का विधि का लेखन करो। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे दक्ष राजा ने श्राप दिया है कि आप एक जगह 3 दिन के ऊपर रह सकते नहीं हो, क्योंकि आप रहते हो तो झगड़ा पैदा करते हो, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आप 3 दिन के ऊपर एक जगह पर रह सकते नहीं हो, तो मैं कैसे रहूँगा यहाँ पर बहुत समय के लिए। तो राधा रानी ने एक बहुत सुंदर बात बताई उनको, उन्होंने कहा कि ये श्राप जो दिया गया है वो भौतिक जगत में लागू है आपके लिए, मटीरियल वर्ल्ड में लागू है, ये मटीरियल वर्ल्ड नहीं है, ये मेरा घर है, दिस इज निज धाम, ये मेरा घर है, रावल बरसाना वृंदावन धाम, यहाँ पर वो दक्ष राजा का शाप लागू नहीं है आपको, इसलिए आप जितना चाहे समय यहाँ पर निवास कर सकते हो। नारद मुनि फिर नाचते नाचते चले गए कुसुम सरोवर के पास ही, नारद वन उनका बना, वो नारद कुंड वहाँ बना, वहाँ पर उन्होंने बहुत देर तक रहकर भजन किया और नारद पंचरात्रि का विधि का लेखन किया। एनीवे ये सब घटनाएं एक जगह पैरेलल चल रही है और उसके बाद में फिर नारद मुनि के कहने के अनुसार उत्सव मनाते ना वो, उन्होंने लिखा है इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, बहुत सारे लिखा है, इसमें लिखा है कृष्ण बलराम नंद यशोदा इनको बुलाना भूलना नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट आइटम है उसके अंदर उनके लिस्ट में, तो उनको बुलाया जाता है, सब लोग आते हैं और इतना सुंदर वर्णन है उसका उनके जन्मोत्सव का कि विश्वानु महाराज इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने समय के बाद में आई है कन्या और सारी जितनी देवियां हैं, जितने देवताएं हैं, वो सब ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर आ जाते हैं, कोई ब्राह्मण बनकर आ रहा है, कोई फूल बेचने वाली बनकर आ रहा है, कोई ढाड़ीन मालीन जो होता है ना, बहुत सारे कंगन बेचने वाले, कोई ये करने वाले, कोई वो करने वाले, से अलग अलग रूप बनाकर सभी देवी देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और विश्वभानु महाराज और कीर्तिदास जी को समझ में आ रहा है कि ये तो इनको तो मैंने इन्विटेशन नहीं दिया है, इनको भी नहीं दिया है, ये कौन है, कहाँ से आया है, इनको भी नहीं दिया इन्विटेशन, ये तो दिया है, इनको नहीं दिया है। ऐसे ही आपको समझता है ना कभी शादी में कि ये कौन है, आई डोंट नो, बट आप शादी में पूछ नहीं सकते हैं कि आप कौन हो, आपको उस कार्ड है क्या। शादी का वातावरण ऐसे होता है उसके अंदर आप किसी को पूछ नहीं सकते कि हु आर यू। तो वैसे वो आनंद के माहौल में सभी देवी देवताओं का दर्शन कर रहे हैं, उनको पता नहीं ये कौन है, लेकिन वो उनके गांव के लोग नहीं, उनके देश के लोग नहीं है, उनको अनजान लोग है सब, और बड़े तेज वाले लोग हैं बिल्कुल। लेकिन ऐसे फूल बेचने वाले और हाला माला बेचने वाले और ये बेचने वाले बनकर आए हैं, वैसे रूप में आते हैं सब। विश्वभानु बाबा, कीर्ति महारानी और राधा रानी सबको ब्लेसिंग देते हैं, गिफ्ट देते हैं, सब चले जाते हैं। साधु संत लोग आते हैं, विश्वभानु महाराज भी धन धान्य के पर्वत दान देते हैं, गायों का दान देते हैं। और विशेष बात यह है कि विश्वभानु महाराज अपने सारे भंडार खोल देते हैं, पहला मोतियों का भंडार खोलते हैं, सब लूट देते हैं सब लोग के ऊपर, सबको बांट देते हैं दक्षिणा के रूप में, और लोग ऐसे भर भर के मोती लेके जा रहे हैं अपने पल्लू में। उतने में खबर आती है कि अभी हीरों का भंडार खोल दिया है, तो मोती सारे वहीं फेंकते हैं और भागते हैं वापस हीरे लेने के लिए। तो हीरों का बंटवारा होता है पूरा सब जगह पे, फिर हीरे लेकर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वाह आज देखो क्या दक्षिणा मिली है, वाह देखो हीरा मिल रहा है। तो पता चलता है कि वो जो एमरेल्ड क्या बोलते हैं उसको, पन्ना, पन्ना का भंडार खोल दिया है। तो वो हीरे डालते हैं जमीन पर, फेंक देते हैं, वो भागते हैं उधर पन्ना लेने के लिए। हीरा, पन्ना, फिर पाचू मोती, हर प्रकार के अष्ट अष्ट जो रत्न हैं, एक एक करके खोलते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि राधा रानी का जन्म जब हुआ तो पूरे ब्रज में सब जगह पर अलंकार अलंकार फैले हुए थे, ऐसे रस्ते पर, एवरीवेयर। ये उसका प्रतीक है कि राधा रानी जो है वो श्री है, वो सब ऐश्वर्य जो है, सब लक्ष्मियों की लक्ष्मी है वो, शी इज़ द प्राइम लक्ष्मी, ओरिजिनल लक्ष्मी ऑफ कृष्णा। उसके वजह से उसके जन्म, ऐसे कहा गया कि कैसे बहुत फकीर लोग थे, सन्यासी विरक्त भिक्षुक लोग थे, उनके घर में अचानक धन धान्य भंडार भर गए। चोखी रोटी खाता है बिना नमक के, बिना घी के, उसके घर में हलवा पूड़ी पैदा हो गया। उसके घर के अंदर अब देखा मुड़ के तो पूरा धन धान्य से भंडार भर गए पूरे। हाँ, धनीराम, धनीराम मतलब क्या कहते हैं उसको, भिक्षुक था वो धनीराम हो गया। हाँ, जो किसी अलंकार के बिना होते थे वो अलंकार से भर गई, सब भूमि अलंकार रत्नों से भर गई, सब जगह आनंद आनंद हो गया, सब देवताओं का संचार हो गया उधर। इतना सुंदर वातावरण राधारानी के जन्म से उत्पन्न हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें संस्कार क्या है, ब्राह्मणों को और भक्तों को दान, जो उन्होंने खूब धर भर के किया, सब संतों को बुला बुला कर सत्कार किया, उनको संतुष्ट किया, दक्षिणा दान भोजन करा के, खीर पूरी का भोजन करा के। तो ये हमारे संस्कारों का एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंग है, संतों को दान। ये किसी भी संस्कार का एक अविभाज्य अंग है, उसको आप टाल नहीं सकते। आज संत तो आजकल रहे नहीं, तो जो भक्त भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, जो वैष्णव है, उनको बुलाकर उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद यानी जब वो हृदय से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं, यानी कि भगवान ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप देखिए, आप कृष्ण लीला को पढ़िए, राधारानी की लीला को पढ़िए, हर एक घटना में उन्होंने संतों को बुलाया है, हर एक घटना में। हाँ, कालिया का मर्दन हुआ, संतों को बुलाया, पूतना का वध हुआ, संतों को बुलाया, शक्टासुर का वध हुआ, तृणाव्रत का वध हुआ, गौचारण का समय आया, संतों को बुलाया। जो एक एक जितने भी संस्कार हुए, जितने भी घटनाएं बुरी अच्छी हुई है, हर समय ब्राह्मणों को वैष्णवों को बुला बुलाकर यशोदा माता ने उनके मुख से शुभाशीर्वाद मंत्रोच्चारण और उनको दक्षिणा दान किया हुआ है। और क्या बताया, मेरे लाला को आशीर्वाद दो। एक गाय और एक संतों का दान, ये दोनों सब जगह पर मुमकिन मौजूद है, उपस्थित है। हर दुर्घटना के बाद उन्होंने गाय के बछड़े की पूंछ जो है अपने बालक के अनेक अंगों पर मंत्रों के साथ में लगाई ब्राह्मणों के द्वारा। हाउ ऑस्पिशियस इट इज, एक गाय के पूंछ के बाल में कितनी शक्ति है। देखो, आपके हर प्रकार के अशुभ जीवन की घटनाओं को नष्ट कर सकता है, हर अशुभ संस्कार को नष्ट कर सकता है, केवल स्पर्श मात्र से। गाय के चरणों की जो धूल है ना, उसके खूर के अंदर कभी कभी अटकती है वो, उसको ब्रजवासी लोग रात को जब गाय लौट के आती है तो गाय का चरण गोद में लेकर उसको निकालते हैं, वो जमा करते हैं, हर रोज उसका तिलक करके बाहर जाते हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य है, किसी की शादी है, किसी का कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है, कोई निर्णय लेने जा रहा है, तो गाय के खुर की रज जो है वो तिलक करके बाहर जाते हैं। ये हमारा धन है, कागज के नोट हमारा धन नहीं है, हीरे जवाहरात सोना हमारा धन नहीं है, हमारा धन संतों का आशीर्वाद है, वही हमें तार सकता है। बाकी यहाँ का धन दौलत हीरे कपड़े लत्ते आपको तार नहीं सकते हैं, आपको बांध सकते हैं दुनिया के भोग में, दुनिया के कर्मों के चक्र में, लेकिन मुक्त नहीं कर सकते आपको। मुक्त केवल संतों को आशीर्वाद कर सकता है, गाय की कृपा कर सकती है, सारा अशुभ जो जीवन में है वो नष्ट कर सकता है। इसलिए हमारे विवाह संस्कार में भी हम दुल्हा दुल्हन को बोलते हैं कि विवाह के बाद तुरंत आपको जाके गाय की सेवा करनी है। आपको भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप गौ सेवा जरूर शुरू करना। जो जो आपको लगता है आपके जीवन में अशुभ हुआ, ये सेवा हुआ हुआ, वो सब अपने कर्मों का फल है, लेकिन हो भी रहा है तो आपको उससे मुक्त होना है, तो संतों की सेवा और गाय की सेवा करो। आप गाय के सान्निध्य में आओ, गौमूत्र के सान्निध्य में आओ, गोबर के सान्निध्य में आ जाओ, गाय के शरीर के सान्निध्य में आ जाओ, के शरीर पर हाथ फेरो, गोबर के बीच में गौशाला में जाके बैठो, वहाँ पे भगवान के नाम का जप करो। सर्वश्रेष्ठ संस्कार है वो आत्मा के ऊपर पवित्रता का, उसमें न केवल रोग दूर होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मेंटल टेंशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है माइंड में आपके, वो भी आपको गाय के पास बैठ के नष्ट हो सकता है। वो एक संस्कार जो उसको कोई समय नहीं है, सातवें महीने में, छठवें महीने में, तेरहवें साल में, कोई समय नहीं है उसका, जब चाहे वो संस्कार आपको अपने ऊपर कर सकते हो, गाय की सेवा का, गाय के सान्निध्य का, और निरंतर आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देते रहते, भले वो भूखी हो, भले वो रुकी हो, भले वो तड़प रही हो खुद हमारे अत्याचार की वजह से, लेकिन वो आपको केवल आशीर्वाद ही देती है। और आपके जीवन का हर अशुभ अपवित्र जो चीज़ है उसको वो नष्ट कर सकती है। वो कितनी भी स्वयं भूखी हो, स्वयं तड़प रही हो दर्द से, उसकी पूछ जब आप अपने आप लगाते हो, सर पे लगाते हो, तो आप शुभता को प्राप्त करते हो। दिस इज लाइफ। एक वैष्णव का, संत का जीवन भी ऐसे होता है, होना भी चाहिए। वी आर हियर टू गिव, नॉट टू टेक। हम संकट में रहेंगे तो भी संत लोग जो है वो आशीर्वाद ही देते हैं, किसी का अशुभ नहीं सोचते हैं। दे विल सफर वट एवर फॉर देयर ओन थिंग्स, पर कभी भी वो दूसरों को आशीर्वाद शुभ चिंतन ही करते रहते। ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए होने वाले बालक के लिए यही तमन्ना करना कि ऐसे ही चेतना वाला पुत्र पुत्री प्राप्त हो, क्योंकि वो जन्म देना भी उसके लिए इसीलिए है कि ये सोचकर जन्म देना है कि ये मेरे जो जीव मेरे गर्भ में आया है उसका ये आखिरी गर्भ है, आखिरी गर्भाशय है, वो और किसी गर्भाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी निकलेगा बाहर तो पुनर्जन्म नहीं लेगा, वो सीधे भगवत धाम चला जाएगा इस जन्म के अंत में। और ये माता को कामना करनी चाहिए कि ये मेरे बालक आपके लिए ये मेरा आखिरी गर्भाशय है, पुनः किसी गर्भाशय में आपको प्रवेश नहीं करना है। तो मुझे इस बात पर आपको एक कथा बताने की बहुत इच्छा हो रही है, शायद सुनी भी होगी आपने रिकॉर्डिंग के अंदर, लेकिन फिर दोबारा बताता हूँ। आज एक रानी थी मदालसा हमारे इतिहास में, वो इतनी श्रेष्ठ माता थी कि वो हर बालक को डे वन ऑफ कंसेप्शन, गर्भधारणा से एक क्षण से, पहले क्षण से वो बालक का ट्रेनिंग शुरू कर देती थी कि तू भारतीय परदेसी नहीं है, तू ब्राह्मण नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है, हाँ तू ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ नहीं है, तू केवल आत्मा है, तू ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन तू केवल भगवान का अंश है, और भगवान को प्राप्त करना ही तेरा इस जीवन का उद्देश्य है, और मेरा ये गर्भ तेरा मेरा तुम्हारे लिए आखिरी गर्भ होगा। ऐसे उसको एक क्षण से ही, पहले क्षण से ही ट्रेनिंग दे रही है, और जन्म होने के बाद में जब उसको दुग्धपान कर रही है तभी भी यही ट्रेनिंग दे रही है, कैसे तुम्हारे अनंत माता हुए हैं, मैं उसमें से एक हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें इस चक्र से मुक्त करा दूँ और भगवान से भेंट करा दूँ, जो उसके संस्कार होते थे। उस संस्कार की वजह से जवान होते ही वो व्यक्ति जो है वो राजपाट छोड़ के जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाता था। तो राजा को तो कई बार गर्भवती होती है पत्नी उसकी, तो हर एक बार गर्भवती, हर एक बार पुत्र होता है, तो वो जा रहा है संन्यास लेने के लिए जंगल में, तो राजा परेशान हो जाता है। तो राजा, राज्य कौन चलाएगा फिर, वारस कौन है राजा के लिए? तो एक बार मीटिंग लेते हो, क्या हो क्या रहा है, एवरीबडी इज गोइंग टू जंगल। तो प्रधानमंत्री कहते हैं महाराज आपने मीटिंग बुलाया है लेकिन इस रोग का जो जड़ है वो आपके अंतपुर में है, आपके अंतपुर में ऐसे ट्रेनिंग मिल रही है, बालक को संस्कार हो रहे हैं उसके ऊपर इतने तेज कि जैसे ही वो समझदारी के उम्र में आता है तुरंत वो विरक्त होकर जंगल चला जाता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो कोई बात नहीं, इसके बाद का जो बालक होगा उसको मैं गर्भ हो जन्म होते ही मेरे पास ले लूंगा, तो मैं संस्कार दूंगा उसको, मैं राजकुमार बनाऊंगा उसको, राजपाठ सिखाऊंगा, युद्ध कला सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करने की। लेकिन लेगा कब वो, जन्म होने के बाद ही ना, थोड़ी जन्म के पहले लेगा, 9 महीने तो तुम्हारे पास ही है ना। बोलो तो कोई बात नहीं, राजा ने निर्णय ले लिया ऐसे ऐसे बालक को ले जाने वाले हो तो कोई बात नहीं, 9 मंथ्स आर विद मी, तो 9 महीने में पूरी ट्रेनिंग देती है उसको वही स्टाइल में, हाँ वही सिखाती है पूरा बालक को 9 महीने तक। और जैसे जन्म होता है वो ले जाता है पिता उसका, और पूरा संस्कार वो करता है आगे का उसका, खिलाना पिलाना सब कुछ, और पूरा राजकुमार बना देता है उसको, पूरा युद्ध करने वाला बहुत पराक्रमी वीर सुंदर राजकुमार बना देता है, और वो बिल्कुल राज दरबार में एक्टिव पार्टिसिपेशन, और जवान होता है युद्ध करने लगता है, सीमा को बढ़ाना प्रारंभ करता है, ऐसे पूरे सब कुछ। और रानी जो है ना वो एकदम फोकस्ड है कि मेरा लक्ष्य तो मैं छोड़ूंगी नहीं, प्रतिकूल हो अति अनुकूल स्थिति हो, मैं तो उसका तो शी इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। जब एक बार वो जाता है युद्ध करने के लिए तो क्षत्रिय औरतें भी जाती थी हमेशा पति के साथ पुत्र के साथ, तंबू में रहती थी और युद्ध का अवलोकन करती थी, शाम को रिपोर्ट पूछती थी उनको, और उनका जख्म को मलम पट्टी करना, उनको उत्साह देना, उनको थोड़ा डाउन हो गया तो उनको उत्साह देना, सब काम करती थी वो, बड़े वीर हुआ करती थी, घुड़दौड़ करती थी, तलवार भी चलाती थी रानियाँ। तो वो जाती है उनके साथ में, तो बीच में युद्ध करते करते वो जंगल पहुँच जाते हैं और तंबू में विश्राम करने का समय आता है, तो माता अपने पुत्र से कहती है अरे अभी हम उस जगह पर आए हैं, तुम्हारे सारे बड़े भाई यहाँ तपस्या कर रहे हैं, क्यों ना तुम उसको उनको मिल लो भी, और कभी मुलाकात होगी तुम्हारी, इस बहाने तुम यहाँ तक आ गए हो। हाँ ये तो बड़ी विचार करने की अच्छी बात है ये। तो माता वो पुत्र को लेकर अपने बड़े पुत्रों को मिलने जाती है, और वहाँ पर वो बड़े सब पुत्र जो बैठ कर तपस्या कर रहे हैं वो सब मिलकर अपने भाई को प्रीच करते हैं। तो वहीं से वो उनको ज्वाइन कर लेता है, उनके यहाँ तपस्या करने बैठ जाता है। तो माता कितनी फोकस्ड है, हाँ वो मौके का इंतजार कर रही है कि मेरे हाथ से तो ले गए पति अपने अधिकार में, लेकिन मैं तो अपने लक्ष्य को छोड़ूंगी नहीं, आई विल कीप वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। वैसे जब तक आपका बालक भगवान के दरवाजे में जाने के तक योग्य नहीं होता तब तक अपना प्रयास चालू रहना चाहिए। आजकल सब लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजी है करियर में, इसमें उसमें, समय नहीं उनको फोकस करने के लिए। लेकिन एक भक्त माता को ये सब होते हुए भी मेरा काम एक ही है, मेरे से गर्भ से जन्म लिए हुए पुत्र का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होनी चाहिए, दिस इज द सोल पर्पज, द प्राइमरी पर्पज, बाकी उसके बाद में कई पर्पज हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी पर्पज यह है कि मेरे कोख से जन्म लिया हुआ जीव भगवान के गोद में पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए प्रयास करना मनुष्य जीवन है, और वो हम करेंगे तो मदालसा रानी की तरह हम धन्य माता हो जाएंगे। इसलिए एक श्रेष्ठ माता के रूप में मदालसा माता का जो है वो नाम ले जाता है, बहुत संस्कृत श्लोक है उसको, वो जैसे बालकों को, बालक को गर्भ में वो शिक्षा दे रही है। तो शिक्षा हम सोचते हैं कि हम बड़ा होगा आएगा बाहर तो मैं उसको संस्कार करूंगी, संस्कार तो अंदर से ही होते हैं। आपके बालक को आप गर्भ से ही सारे श्लोक पढ़ा सकते हैं, जो भी आपको उसको बनाना है वो बना सकते हैं, उसके लिए प्रेरणा अंदर से दे सकते हैं, उसका बीज बो सकते हैं। मतलब भौतिक दृष्टि से उसको संगीतकार बनाना है, उसको गायक बनाना है, उसको वाद्य बजाने वाला बनाना है, उसको साइंटिस्ट बनाना है, उसको गणितज्ञ बनाना है, उसको क्या करना है, उसको योद्धा बनाना है वॉर में, वो सबका जो बीज है भावनाओं का, प्रेरणा का, वो आप गर्भावस्था में बो सकते हो, क्योंकि गर्भावस्था में बालक जो है पूर्णतः आप पर निर्भर होता है। जब बाहर आएगा तो उसका भी चॉइस आना शुरू होगा, अभी नहीं खाना है, पीछे पीछे भाग रही माता उसके, अभी नहीं खाना है, अभी नहीं सोना है, अभी खेलना है, ये पीला नहीं पहनना है, मुझे हरा ही पहनना है आज, वही चाहिए, ये नहीं चाहिए नाश्ते में, वो अपना चॉइस शुरू होता है। मतलब जो 100% निर्भर बालक अभी अंदर है वो धीरे धीरे 99, 98, 97, 90, 60, फिर 10 साल का हो गया तो 100% इंडिपेंडेंट, किसी के नहीं सुनता है फिर वो। तो जब वो पूर्णतः निर्भर है तब उसमें भक्ति का बीज बोना है आपको, और वो कितना भी जाके भटकेगा आगे, वो बीज उसको आगे जाकर उसका फल देगा, उसको फिर रास्ते पे लेके आएगा। इसलिए गर्भावस्था, फिर उसके बाद पहले 6 महीने, फिर उसके बाद पहले 6 साल, यहां तक आपकी पूरी परवरिश 100% होनी चाहिए, उसकी नींव मजबूत वहां पर 6 साल तो देनी चाहिए, फिर उसके बाद में उसको फिर फॉलो करना चाहिए बस क्या कर रहा है उसको। लेकिन आपकी जो मजबूत नींव आपने दी है आध्यात्मिक, वो कभी भी आपको वो धोखा नहीं देगी, भले इधर उधर भटकेगा वो। प्रभुपाद जी भी सक्सेसफुल थे आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन बीच में वो भक्ति से भी अलग हो गए थे कुछ समय के लिए। जन्म से एकदम वैष्णव तरीके से उनका परवरिश हुआ, लेकिन जवान हुए तो फिर महात्मा गांधी के आंदोलन में गए, फिर कॉलेज चले गए, फिर इधर वक्तृत्व स्पर्धा में चले गए, एलोक्यूशन में चले गए। लेकिन जब उनके संस्कार के प्रभाव से फिर वो गुरु जी को मिले, फिर वो संस्कार जो बोए हुए थे वो तुरंत जागृत हो गए। समझ में आपको आया? जो बीज रूप में था वो फल रूप में प्रकट हो गया तुरंत। तो आपने दिया हुआ संस्कार जो है, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि मेरे पिता जो है वो परम भक्त थे भगवान के, वैष्णव थे वो, उन्होंने जो परवरिश दिया है। इसलिए कई किताब प्रभुपाद जी ने अपने पिताजी को अर्पण किए हैं, मेरे पिताजी गौर मोहन डे को अर्पण, क्योंकि उन्होंने उनको जो संस्कार दिए फिर वो उनके गुरुजी ने, दूसरे पिताजी ने उनके बढ़ाए उसको। लेकिन मूल संस्कार माता पिता के होते हैं, फर्स्ट संस्कार उन्हीं के हाथ से हमारी परवरिश होती है, उसको हम उस संस्कार को कभी कम वैल्यू दे सकते नहीं है। इसलिए माता पिताओं को भक्त बनना चाहिए, और ये जानकारी के साथ गर्भाधान संस्कार के साथ उसके आगे से ही परवरिश बच्चों को संस्कार के रूप में देनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भी वही कहते हैं कि जो प्रेम और जो संस्कृति मेरे माता ने मुझे दी थी, इतना प्रेम दिया। हाँ, एक अमेरिकन परिवार है वो, लेकिन पुराने जमाने की बात है, इतना प्रेम दिया, अगर प्रेम में डुबो दिया, कहते माय पेरेंट्स एंड माय मदर ड्राउंड मी इन लव इन चाइल्डहुड। प्रेम भी एक संस्कार होता है, ऐसा नहीं कि खाली मंत्र ही बोलना है आपको, एक प्रेम भावना जो होती है वो भी एक संस्कार है। जब वो आप जीव को देते हो तो जो जीव को प्राप्त हुआ है वही जीव दूसरे को दे सकता है। यू कैन ओनली गिव वॉट यू हैव रिसीव्ड, जो आपको मिला ही नहीं आप दूसरे को कैसे दे सकते हो। तो उन्हें कहा इसलिए कि मुझे इतना प्रेम मिला है तो मुझे वो दूसरे को देना है, आई ओनली हैव दैट टू गिव अदर्स, सो आई एम गिविंग। अगर मुझे बहुत घृणा, क्रोध, हिंसा, द्वेष इसकी भेंट मिली होती तो मैं उसी को दूसरे को देता, हाउ विल आई गिव एवरीथिंग एल्स अदर्स टू अदर थिंग्स टू अदर्स व्हाट आई हैव रिसीव्ड दैट आई विल गिव टू अदर्स। तो संतों का जीवन बैकग्राउंड ऐसा है, भक्ति तीर्थ महाराज, इंद्रदुन महाराज, ये सब ने यही कहा है कि हमको बचपन में हमारे माता पिताओं से बहुत अच्छे संस्कार मिले, भले विदेशी होने पर भी एक संतृप्त जीवन मिला हमको, संतुष्ट जीवन मिला उनकी तरफ से, और वो संतुष्ट